चरणों में नमो श्री कृष्ण का वंश प्रार्थना करता हूँ। आज के उत्तम परमचंद धन पर अपने मंगल में सार करते आध्यात्मिक प्रवचनों से हम सबको प्रकाश करें। परम पूज्य द्वारा समाता करती मंगल
मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अर्हंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। आज भी शायद यही कहूंगा कि एक दिन और हमारे पास है जिसमें हम अपने बाबत विचार करें, और शायद ये एक ही दिन और शेष रहा है हमारे हाथ में पूरे एक वर्ष में, जो शायद कभी धर्म की बात भी सुनना पसंद नहीं करते हैं, उनने भी बहुत कोशिश करके इन 10 दिनों में थोड़ा सा धर्म करने की कोशिश तो की है। ये 10 दिन देखो कितने कीमती हो गए कि 355 दिन पर भारी हो गए। जिसने कभी मंदिर आने का नहीं सोचा होगा वो भी ये सोच के कि चलो पर्युषण लगे हैं, 10 लक्षण लगे हैं, चलना चाहिए, दर्शन तो करके आते हैं। आज भी ये भले ही परंपरागत पर्व हो पर इनका महत्व तो है। हमने शुरुआत की थी धरती से, क्षमा से, और आज हम समापन करेंगे आकाश से, ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचर्य के मायने बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आकाश की तरह निर्मल हो जाना और आकाश की तरह सबको समान भाव से अपने हृदय में जगह देना, इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। एक वृक्ष की तरह हम इस यात्रा को देखें तो बहुत आसान होगा। हमने 10 दिन जो यात्रा की है, एक बीज गिरता है जमीन के भीतर, जब वो झुकना नहीं पसंद करता है, जब वो गिरना पसंद करता है, जब वो धरती को अपने आप को दे देता है, तब उसकी यात्रा शुरू होती है और फिर गलना स्वीकार करता है। गिरना क्षमा है, धरती की तरह हो जाना और उसके बाद गलना वो विनय है। जब वो गलता है तभी उसमें अंकुरण होता है, और अगर सीधा सीधा ना हो, टेढ़ा मेढ़ा निकले तो कहीं वहीं जमीन में ही खो जाएगा, सीधा निकल करके बाहर आता है। ये सीधापन ऊंचाइयां देता है। और फिर कभी आपने देखा कि उसके ऊपर कैसे थोड़ी सी माटी उस बीज के ऊपर लगी रहती है। वो माटी जब हट जाती है तब पूरी तरह से रोशनी में आता है वो पौधा। वो माटी हटना विकारों को जीतना है, लोभ को जीतना है, पवित्रता को प्राप्त करना है, और जो बाहर निकल करके प्रकाश का रोशनी का अनुभव है वही तो सत्य धर्म है, वही तो सच्चाई का अनुभव है। फिर क्या करते हैं, बहुत छोटा सा पौधा है, बाड़ लगाना पड़ेगी, नहीं तो गाय भी आकर के पैर रख देगी या कि मुंह मार के चली जाएगी, खा जाएगी। तो एक बाड़ लगा देते हैं उसकी रक्षा के लिए। सच्चाई की प्राप्ति के बाद बुराइयों से बचने के लिए जो हम अपने को संयमित कर लेते हैं उसी का नाम तो संयम धर्म है। वो हमने बाड़ लगा ली है और फिर धीरे धीरे पौधा बढ़ता है, फिर इतना बढ़ना शुरू करता है कि आग बरसे चाहे पानी बरसे चाहे ठंड पड़े सब सहन करता है, बड़ी तपस्या करता है, तब वृक्ष बड़ा होता है और बड़ा होकर के फल फूलदार होता है। फिर जब फल फूल से लग जाता है तो अपने आप देना शुरू कर देता है, जो भर जाता है वो ही दे सकता है। और फिर त्याग शुरू होता है, सब ले जाओ, पूरे फल निकाल के ले जाओ, फूल निकाल के ले जाओ, सुगंध ले जाओ, सब कुछ देना शुरू कर देता है। और देते देते फिर एक दिन अकेला एकाकी, जब तक देता है तब तक तो सब लोग आते हैं उसके पास, जिस दिन उसके फल और फूल सब खत्म हो जाते हैं उस दिन कोई नहीं आता, तो एक अकेला चुपचाप एकाकी, फिर भी मन में कोई विकल्प नहीं उसके कि कोई क्यों नहीं है उसके पास, वो सफिशियंट है अपने लिए, वो पर्याप्त है, ऐसा चुपचाप खड़ा रहता, फिर भी छाया देता रहता है। जो आकिंचन को उपलब्ध होता है उसकी छाया सबको मिलना शुरू होती है और उसकी ऊंचाई कहां जाती है, आकाश में। वो आकाश की ऊंचाइयां छू लेता है वो पौधा। ठीक इसी तरह से अगर हम अपने जीवन के इस बीज को क्षमा की धरती में बोते हैं तो एकदम आकाश की ऊंचाइयां पाते हैं, ब्रह्मचर्य की ऊंचाइयां पाते हैं। बहुत आसान से हमारे दसों धर्म आज के दिन हमने शायद प्राप्त कर लिए होंगे। ब्रह्मचर्य के सीधे सीधे अर्थ हैं, आत्मलीनता का नाम ब्रह्मचर्य है, लेकिन आत्मलीनता इतने जल्दी सधती नहीं है, तो क्या करें। तो कहते हैं देह के प्रेम से हटकर आत्म प्रेम की तरफ बढ़ना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। देह प्रेम से पार होकर के ऊपर उठ करके आत्म प्रेम की तरफ बढ़ना, इसी का नाम तो अपने आत्मा से भी प्रेम और प्राणी मात्र की आत्मा से प्रेम। अभी तो अपनी देह से प्रेम हो जाता है तो उसको सजाने में लग जाते हैं, दूसरे को अपनी देह से रागान्वित करते हैं या कि दूसरे की देह से सौंदर्य करते हैं। तो कहते हैं दूसरे की आत्मा से प्रेम करो, अपनी आत्मा से प्रेम करो, तब जीवन में ब्रह्मचर्य आसानी से घटित हो सकता है। ऐसे आत्म प्रेम या कि प्राणी मात्र से प्रेम का ये धर्म है, इसकी शुरुआत यहीं से होती। जैनेन्द्र कुमार को तो लिखना पड़ा कि मुझसे कोई कहे कि ब्रह्मचर्य क्या है तो मैं कहूंगा सबके प्रति प्रेम का नाम ही ब्रह्मचर्य। और दूसरी जगह लिखते हैं कि ये कैसे घटित होता है जीवन में, तो कहते हैं कि मातृत्व का विस्तार हो जाए तो ये घटित हो जाता है। गांधी जी ने स्वयं अपने जीवन में एक दिन जब किसी ने बाबाजू में बैठी थी तो कहा कि ये कौन है, आपकी मां है क्या, तो थोड़ी देर तो सोच में पड़े, फिर बोले कि हां बा हमारी मां है, आज से हमारी मां हो गई। जबकि बा से उन्होंने विवाह किया था और एक स्थिति में पहुंच के वो मां हो गई। बोले बापू आप कैसे कहते हैं कि बा मां है, बोले मैं तो सोच में पड़ गया था कि सचमुच ये मां ही तो है, सवेरे से हमको जगा देती हैं कि उठो समय हो गया, 4 बज गए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो हम इनके कहने से जैसे मां के कहने से बेटा जागता है सुबह, ऐसे ही हम जाग जाते हैं। फिर नहलाने धुलाने की हिदायतें देती हैं, कभी कभी हमसे नहाते धोते नहीं बनता तो नहलाती धुलाती भी, फिर कहती कि बैठो, और परोसती हैं और मां की तरह पंखा हिलाती रहती हैं और हमको भोजन कराती हैं, फिर रात हम लौटते हैं तो सुला देती हैं कि सो जाओ बहुत देर हो गई। तो ये तो दिन भर हमको मां की तरह ही तो हमारे साथ व्यवहार करती है, इसलिए अब हम आज कहते हैं कि बा हमारी मां हो गई है। उस दिन ब्रह्मचर्य घटित हो गया। जैनेन्द्र कुमार ने लिखा कि ब्रह्मचर्य की बड़ी बड़ी परिभाषाएं बनाने वालों से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज्यादा जिस चीज का निषेध करता है उसके पीछे उसका उतना ज्यादा राग कहीं ना कहीं छुपा होता है। जितना निषेध करता है इसलिए नहीं, इसको देखो ही मत, आंख फोड़ लो, आंख फोड़ने से ब्रह्मचर्य उपलब्ध होता तो जो आंख वाले नहीं उनको सबको हो गया होता। हो गया होता उनको। कहते ऐसा अर्थ नहीं, वो लिखते हैं कि मैं अपने पिता की जीवन साथी को अपनी मां मानता हूं। बहुत सीधी सी बात है, ये तो कोई भी कह देगा, मैं अपने पिता की जीवन साथी को अपनी मां मानता हूं और अब तो मैंने अपने बच्चों की मां को भी मां कहना शुरू कर दिया है, हो गया मेरा ब्रह्मचर्य घटित हो गया। कोई बहुत कठिन सी चीज नहीं, मुझे तो इस चीज का अनुभव था नहीं, जब मुझे एक घटना हमेशा याद आती है और ऐसे मौके पे सुनाता हूं कि जिसने मुझे इसकी परिभाषा समझाई थी और इतने आसानी से समझा दी थी उसकी याद तो आ ही जाती है, भले ही वो पूरे जीवन में संबंधी रही हो। वो बुआ जी थी और आचार्य महाराज के पास सन 77 में मुझे ले करके जाया करती थी, तो मैं उनके पास बैठा रहता था, समझता तो था नहीं क्योंकि आचार्य श्री से जो डिस्कशन चलता था बड़ा कठिन कठिन, अपने पसंद आते नहीं था अपने, पर उनके साथ जाना है वो लेके गई है तो बैठे रहते थे। एक दिन उन्होंने व्रत लिया आचार्य श्री से कि हमारा ब्रह्मचर्य व्रत है साल भर के लिए, तो हमने बाहर आके कहा कि इसके मायने क्या होता बुआ, ये ब्रह्मचर्य के मायने क्या होता। बोले बेटे तू नहीं समझेगा, कभी बताऊंगी। उस समय इतना छोटा भी नहीं था, 20 बरस का था, पर मुझे तो नहीं मालूम था कि ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। एक दिन मैं उनके घर पहुंचा तो बैठा हुआ था और वो पलंग पर बैठी थी, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था। उतने में जो है वो फूफा जी आ गए और आते ही साथ उनके बाजू में बैठ गए, पलंग पर ही बैठ गए। बुआ जी मुस्कुराई, मेरी तरफ देखा और बोली बेटे तू इधर आ मेरे इस तरफ बैठ। तो मैं भी उनके बाजू में बैठ गया, दोनों के ऊपर उनका हाथ रखा है, मेरे ऊपर भी एक हाथ है और एक हाथ फूफा जी के ऊपर रखा। मेरे से बोली एक दिन तू पूछता था ना कि ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, आज बताती हूं। अभी पूरी तरह से मेरे जीवन में आया नहीं है, अभी जो धारा तेरे ऊपर जो हाथ रखा उसमें बह रही है वो इस तरफ के हाथ में नहीं बह रही। जिस दिन ऐसी धारा इस हाथ में बह जाएगी उस दिन मेरा ब्रह्मचर्य हो जाएगा, इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। इस एक हाथ में कुछ और स्पर्श है, इस एक हाथ में कुछ और स्पर्श है, जब दोनों का स्पर्श तेरे के समान एक बेटे के समान हो जाएगा उस दिन मेरा ब्रह्मचर्य संपन्न हो जाएगा। तब की परिभाषा आज भी मेरे समझ में आती है। शायद जीवन में इतनी पवित्रता हमारे आती है कि हमें सिवाय दूसरे में ब्रह्म के परमात्मा के कुछ और दिखाई नहीं पड़ता, अनचेस्टिटी होने का सवाल ही नहीं उठता है अगर कहीं किसी को परमात्मा और आत्मा दिखाई पड़ जाता है। लेकिन दोनों जब ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ता है, जब अपने ही भीतर का ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ता है तो प्राणी मात्र में वो ब्रह्म कण कण में भगवान विराजे हैं ये कहां दिखाई पड़ेगा। तो फिर हम उसके प्रति अपने व्यवहार को पवित्र कहां बना पाएंगे। पर जिसने ब्रह्म को देखना शुरू कर दिया अपने भीतर और प्राणी मात्र के भीतर, वो ब्रह्म में रमन करना शुरू कर देता है, वो आत्मा में लीन होना शुरू कर देता है, उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य और कोई बहुत बड़ी सी चीज नहीं। मैं तो सोचता हूं व्याख्या जो मैं कभी करा करता था आज एलक जी के मुंह से वो सुन करके बहुत अच्छा लगा कि मैं जो इस तरह की बात सोचता था वो बात सही है। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो माता बहन सुता पहचान। उत्तम ब्रह्मचर्य की इतनी ही परिभाषा मेरे समझ में शुरू से आती रही, सो आज भी वही परिभाषा समझ में आती है कि हमारा प्रेम हमारा वात्सल्य इतना पवित्र हो जाए कि उसके बीच में से वासना निकल जाए। क्योंकि जब जब भी हम चीजों को व्यक्ति को और वस्तुओं को देखते हैं तो सबसे पहले आकर्षण हुए बिना नहीं रहता है। आकर्षण होता है तो धीरे धीरे लगाव बढ़ना शुरू होता है, और अगर वो लगाव आत्मा के प्रति है तब वही लगाव कल्याण का कारण बन जाता है, और वही लगाव यदि देह के प्रति है और इंद्रियों के प्रति है, इंद्रिय के विषयों के प्रति है, तो वही लगाव जो है वो संसार की तरफ ले जाता है। लगाव बुरा नहीं है, लगाव के प्रति हमारे दृष्टिकोण की बात है। सुखदेव नग्न होकर के चले जाते थे रास्ते से, नदी के किनारे से गुजरते थे, और सुखदेव नग्न 20-22 वर्ष के सन्यासी और नग्न निकल गए। जो बहने नहाती थी, माताएं नहाती थी, स्नान करती थी, किसी ने अपने कपड़े तक नहीं संभाले और नहाती रही, और सुखदेव के 80 वर्ष के पिता वहां से गुजरे तो सबने अपने अपने कपड़े संभालना शुरू कर दिए। उनके पिता को बहुत गुस्सा आई कि अभी मेरा लौका गुजरा है तब इनको शर्म नहीं लगी और मैं इतना बूढ़ा हो गया और इनको शर्म लग रही है, अपने कपड़े संभाल रही है, तो पूछ लिया कि जब मेरा 22 बरस का बेटा और नग्न में तो कपड़े पहने हूं फिर भी तुम अपने कपड़े संभालने लगी। तब उन बहनों ने क्या जवाब दिया था कि अपनी आंख संभाल लो तो हमें कपड़े नहीं संभालना पड़े। सुखदेव को तो हमारी क्या, उसको तो अपनी तक सुधबुद्ध नहीं थी, उसको तो परमात्मा की इतनी तल्लीनता है कि उसने हमारी तरफ देखा ही नहीं, पर तुम्हारी आंख संभली नहीं है, तुम्हारी आंख संभाल लो तो हम कपड़े नहीं संभालेंगे, तुम्हारी आंख गड़बड़ हो जाती इसलिए हमें कपड़े संभालना पड़ते हैं। इतना ही ब्रह्मचरी मेरे ख्याल से मैं तो अभी तक इतना ही समझ पाया। और कौन सा उदाहरण आपको दूं, दृष्टि की निर्मलता और मातृत्व का विस्तार शायद इससे ज्यादा और कोई धर्म की शुरुआत नहीं है, और आज यही हमारे नैतिक पतन का कारण बन रहा है। हम भले ही बहुत दूरी रख रहे हों लेकिन हमारे भीतर कितना अधिक राग और विकार बैठा हुआ है ये कौन देख पाता है, और यही हमारे नैतिक पतन का कारण बन रहा है। हमारी विकृत दृष्टि, उसी को हमें सुधार लेना है। जब आम्रपाली जो कि नगर वधु थी, जब बुद्ध के विहार में पहुंचने वाली थी, आने वाली थी, तो भिक्षुओं ने कहा कि हम भिक्षुओं को क्या आदेश है, देवी आम्रपाली आने वाली हैं, सबसे सुंदर हैं वैशाली की, और वे आने वाली हैं बुद्ध के दर्शन करने, हम भिक्षुओं को क्या आदेश है। तो बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं को कह दो कि जब देवी आम्रपाली आए वे अपनी आंख नीचे कर लें। भिक्षुओं का आदेश जारी हो गया, पर किसी भिक्षु ने कहा कि यदि देवी आम्रपाली दिख जाएं तो, हमने आंख नीचे कर ली फिर भी दिख जाएं तो बुद्ध का दूसरा आदेश जारी हुआ कि कह दो अगर दिख जाएं तो देवी आम्रपाली को देख लें। पहली दृष्टि, पहली बात क्या कही थी कि आंख नीचे कर लें जब वो आए तो, असल में आंख ही नीचे हो जाए ना तो सारा खेल हो जाए। आंख नीचे नहीं हो पाती, दूसरे की आंख नीचे करने की कोशिश जरूर होती है, अपनी आंख नीचे हो जाए तो दूसरा आदेश जारी हुआ था कि अगर देवी आम्रपाली दिख जाए तो देख लेना, पर देखने की कोशिश मत करना, दिख जाए तो देख लेना। पर किसी भिक्षु ने और आगे बढ़कर के प्रश्न पूछवाया कि जाकर के बुद्ध से पूछें कि अगर कोई भिक्षु देवी आम्रपाली को देखना चाहे तो क्या आदेश है। तो बुद्ध ने तीसरा और आखिरी आदेश जारी किया था कि जाओ, ये अंतिम आदेश है भिक्षुओं को, कह दो कि देवी आम्रपाली आए तो वे देवी आम्रपाली को जी भर के देखें लेकिन आसक्त ना हो, आखिरी आदेश है। पहली बार की दृष्टि नीचे कर लेना, दिख जाए तो देख लेना, देखने की चेष्टा मत करना, अगर देखने की इच्छा भी हो देख लेना पर आसक्त मत होना, इसी का नाम ब्रह्मचरी है, चाहे जैसे आप उसको प्रदर्शित करना चाहें। और एक घटना आपको सुनाता हूं, मैंने बहुत पहले नवनीत में कविता, पहले कविता सुना देता हूं, आचार्य महाराज को बहुत पसंद आई थी ये कविता। अभी तुमने आग के रंग के कपड़े पहने हैं, गेरु वस्त्र धारण कर लेते हैं सन्यासी, अभी तुमने आग के रंग के कपड़े पहने हैं, अभी तुम्हारा काम योग की आग में जला नहीं है, अभी तुम्हारा काम योग की आग में जला नहीं है, तभी तो फर्क नजर आता है स्त्री और पुरुष में, तभी तो फर्क नजर आता है स्त्री और पुरुष में, स्त्री के पीछे भागना और स्त्री से दूर भागना यात्रा दोनों में जारी है, स्त्री के पीछे भागना और स्त्री से दूर भागना यात्रा दोनों में जारी है, जब तक यह यात्रा जारी है तब तक संन्यास की यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है। एक बौद्ध भिक्षु जो कि बहुत युवा था अपने वृद्ध भिक्षु के साथ नदी के किनारे जाता था, अचानक देखा कि एक बहन, कम उम्र वाली बहन, और नदी में डूब रही है, बचाने के लिए हाथ उठा रही। उस युवा भिक्षु ने यहां वहां नहीं देखा और कूद करके उस बहन को उठा करके नदी के किनारे रख दिया। जो बूढ़ा वाला भिक्षु था उसने आंख देखी, गौर से घूर करके देखा, पाप कर लिया तुमने। वो उसको टोसता रहा पूरे रास्ते, जब तक कि मैं बुद्धि से कहूंगा तुमने उसका स्पर्श किया, तुमने उसे बाहर क्यों निकाला। और युवती थी वो भिक्षु जो नवयुवक था चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। जाकर के उस वृद्ध भिक्षु ने बुद्ध से कहा कि इस भिक्षु ने ऐसा ऐसा करा है, इसे प्रायश्चित दिया जाए। तो मालूम बुद्ध ने क्या कहा कि प्रायश्चित के भागी तो तुम हो। उसने तो उसे उतार के वहीं रख दिया, तुम तो यहां तक ले आए उसके लिए। उसने वहीं निकाल के छोड़ दिया, भूल गया वो कि कौन था कौन नहीं था। तुम यहां तक ढो रहे हो, तुम अभी तक उसका स्पर्श कर रहे हो, प्रायश्चित के भागीदार वो नहीं तुम हो। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे दृष्टिकोण की बात है कि हमारे दृष्टिकोण में पवित्रता है या पवित्रता है। आज अगर हम अपने दृष्टिकोण को पवित्र बना लें तो हम ब्रह्म को हर जगह देख सकते हैं और उस ब्रह्म में रमण कर सकते हैं। अनुव्रत, महाव्रत और ब्रह्मचरी प्रतिमा तीनों रखे हैं। पशुओं ने कभी संबंध नहीं बनाए, मनुष्य होशियार है और उसकी होशियारी उसको गिरा भी सकती, उसकी होशियारी उसे संभाल भी सकती। इसकी बहुत होशियार लोगों ने, बहुत समझदार लोगों ने पशुओं के जैसे संबंध नहीं बनाए हैं, उन संबंधों को परिष्कृत किया है। पशुओं में मां बेटे का संबंध नहीं होता है, वहां सिर्फ दो ही है, स्त्री और पुरुष। लेकिन यहां मनुष्य ने डेवलप होकर के संबंध बनाना शुरू किए हैं कि ये मां है तो ये बहन है तो ये बिटिया है। बस इतने संबंध उसने बना करके अपने को बहुत सीमित कर लिया है। कहते इसी का नाम ब्रह्मचरी अनुव्रत है। किसी एक के साथ हमने अपना संबंध स्थापित, वैवाहिक जीवन, और वो भी क्यों, मुझे एक ऐसी संतान उत्पन्न करनी है जो धर्म के मार्ग पर चल सके और मेरे परंपरा को निभा सके, इसलिए विवाह करना है। और विवाह का कोई मकसद नहीं है। महापुराण पढ़िए, उसमें लिखा है कि विवाह की परिभाषा क्या है और विवाह का मकसद क्या है। एक ही मकसद है कि मैं पूरी तरह से ब्रह्मचरी महाव्रत को अंगीकार नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए अनुव्रत लेता हूं। अनुव्रत में भी ब्रह्मचरी है, किसी एक के साथ संबंध रखना भी ब्रह्मचरी कह रहे हैं। इसके मायने क्या है? इसके मायने यह है कि जो हमारी दृष्टि थी वो सबके प्रति पवित्र हो रही है, इसलिए ब्रह्मचरी। हालांकि आंशिक रूप से है, पूरी तरह से नहीं है हम सही में, इसलिए चार बातों का ध्यान इसको प्राप्त करने के लिए रखा जा सकता। दृष्टिकोण तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। लोग बाहर से सात हाथ की दूरी की बात करते हैं और भीतर से एक इंच की दूरी भी नहीं रखते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि बाहर से भले ही इंच भर की दूरी ना हो पर भीतर से दूरी बनाए रखिए। और कम से कम दूसरे के लिए, कोई भी देखता है तो बस एक ही दृष्टि से देखता है। दो लोग बात कर रहे होंगे तो हर व्यक्ति कोई दूसरा संबंध ही उसको नहीं आता, मेरे ख्याल से एक ही संबंध आता, दूसरा संबंध तो आते नहीं। आज इतनी विकृत दृष्टि हो गई। अपने को बहुत पवित्र मानने वाले लोगों की बात मैं आपसे कर रहा हूं कि अगर कोई खड़े होकर के और दो लोग बैठ के बात कर रहे होंगे, वो बहन भी होगी, तब भी उनकी पहली दृष्टि यही जाएगी, गलत दृष्टि ही जाएगी। भले ही बात करने वाले की गलत दृष्टि ना हो, इसका परिणाम सीता जी को मिला था। पूर्व जीवन में उन्होंने जो मन में भाव ला लिया था, एक मुनि महाराज जी और उनकी गृहस्थ अवस्था की बहन बैठ करके तत्व चर्चा करती थी, और सीता जी का पूर्व जीवन का जीव, उसने इतने विचार कर लिया था कि अच्छी जोड़ी बनी। उन साधु के प्रति ऐसा भाव करने का परिणाम ये लगा कि उनके ऊपर एक छोटे से आदमी ने इतना बड़ा अपमान लगा दिया। लेकिन ध्यान रखना, वे पतिव्रता थी, और कितनी बड़ी पतिव्रता थी। राम और सीता जी का जो जीवन है सबसे आदर्श जीवन माना गया है। कितनी पतिव्रता थी, कभी आप पद्म पुराण उठा करके देखिए, जब अग्नि में प्रवेश की बात करी जाती है कि दिव्य न्याय होगा, कौन सा पसंद है, तो अपने आप स्वीकार करती हैं कि अग्नि में गुजर करके बता सकती हूं, तो गुजरो अग्नि से। और कहते हैं कि ओम नमः सिद्धेभ्यः कह के सीता जी ने श्लोक पढ़े थे। क्या श्लोक का आशय था कि हे अग्नि, यदि मैंने स्वप्न में भी राम के सिवाय अन्य किसी पुरुष का स्मरण भी किया हो तो तू मुझे क्या जलाएगी, मैं तो पहले ही जल के नष्ट हो गई। अग्नि के सामने खड़ी है और कह रही है कि हे अग्नि, अगर मैंने स्वप्न में भी राम के सिवाय अन्य किसी को चाहा होगा, स्मरण भी किया होगा स्वप्न में भी, तो तू क्या मुझे जलाएगी, मैं तो अपने आप ही जल के मर गई। और अगर मैंने नहीं किया है तब भी तू मुझे क्या जलाएगी, मैं प्रवेश करती हूं। अगर मैंने किसी का स्मरण राम के सिवाय और किसी को नहीं चाहा तो तू मुझे क्या जलाएगी, मैं अभी प्रवेश करके बताती हूं। प्रवेश कर गई थी, देवों ने जय जयकार करना शुरू कर दी थी, और उस समय देखने लायक था कि जिसने अकेला अनुव्रत लिया था, ब्रह्मचर्य अनुव्रत था, सिर्फ राम को ही अपना माना था, इसके अलावा सबके प्रति दृष्टि में निर्मलता थी, उनका चमत्कार देखिएगा कि पूरे में पानी पानी हो गया था, और फिर तो सबको बचना मुश्किल हो गया था। सीता जी अकेले कमल पर स्पष्ट जल ते भिन्न कमल है, जैसे ऐसा ही एक गृहस्थ में रह करके भी और एक गृहिणी को अपने साथ रखकर भी वैवाहिक जीवन जी करके भी कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य अनुव्रत से रह सकता है। और उसका महात्म अगर देखना है तो कभी सीता जी के जीवन का आदर्श देख लीजिएगा कि कमल के ऊपर विराजी हैं, रामचंद्र जी के चरणों तक आकर के पानी रुक गया था कि बोलो क्या करना है। और उसके बाद जब वो आरी का दीक्षा ले लेती हैं तब रामचंद्र जी भी उनको आरी का माता को प्रणाम करते हैं कि मां प्रणाम। सीता राम कहते हैं, सबसे पहले सीता जी का स्मरण करते हैं। वो पहले आरिका बनी थी, रामचंद्र जी ने तो बाद में ग्रह परित्याग करके और आत्म साधना करके मुक्ति पाई थी। एक ब्रह्मचरी आश्रम में नहीं रहने वाला, गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति भी इतनी ऊंची साधना कर सकता है, इसके मायने हैं कि आज हम भी अगर चाहें तो इस ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में उपलब्ध कर सकते हैं। इतना ही है ध्यान रखने लायक कि मानसिक स्वस्थता रहे, स्वस्थ मानसिकता रहे पहली बात, और दूसरी चीज इंद्रियों का क्रम क्रम से हम संयम रखें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो कि चारित्रवान हैं, उन्हीं से मित्रता रखें, उन्हीं का सानिध्य पाएं, वैसा ही साहित्य अपन पढ़ें जिससे हमारा चारित्र का विकास हो। घटिया साहित्य पढ़ेंगे, घटिया लोगों के साथ रहेंगे, हम तो ये जानते हैं कि जिसकी जैसी आदत उसको वैसे लोग मिल जाते हैं। उसके आसपास आप देख लीजिए, जो जैसा होगा उसके आसपास वैसे ही लोग अपने आप जुड़ जाएंगे, जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं। पर आप सावधानी रखिए, अगर आप चारित्रवान अपने को बनाना चाहते हैं तो चारित्रवान की ही संगति प्राप्त करिएगा। और आखिरी बात, भगवान की प्रार्थना करना मत भूलिएगा। लिखा है जो गुरु के समीप रहता है या गुरु को अपने समीप रखता है वही व्यक्ति ब्रह्मचर्य से युक्त होता है। जो भगवान की प्रार्थना में निरंतर लीन रहता है वो ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक पालन कर सकता। चार ही बातें हैं, एक तो स्वस्थ मानसिकता और धीरे धीरे इंद्रियों का संयम और एक अच्छी संगति और भगवान के प्रति ईश भक्ति जिसको कहते हैं प्रार्थना। ये चार बातें अगर जीवन में आती हैं तो आज का ये धर्म हमारे जीवन में बहुत आसानी से हम प्राप्त कर सकेंगे। मैं भावना भाता हूं कि हम सब आज इस समापन दिवस पर, इसको समापन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब फिर से ये एक साल बाद 10 दिन लौटेंगे, पर यदि हम चाहें तो इन 10 दिनों को अपने जीवन में रोज रोज घटित कर सकते हैं इनके आने से पहले, और हम अपनी तैयारी हमेशा रख सकते हैं। ऐसी भावना के साथ मैं तो इस बार यही भावना भा रहा हूं कि ये 10 दिन हम जल्दी से कल भूल नहीं जाएंगे, बल्कि 355 दिन इन 10 दिनों को याद रखेंगे कि देखो हमने कैसे और 10 दिन जिए थे, हम ऐसे 10 दिन हमेशा जी सकते हैं। कितनी पवित्रता और कितनी शांति और कितना हमने अपने इंद्रियों को संयमित कर लिया था। मैं तो कल से जो है और आज सुबह तक, बल्कि परसों से रोज जो है 100-150 लोग जो है, मैं तो सुबह से बंद रह जाता हूं जब लोग आना शुरू होते हैं। आज हमारा उपवास है, आज हमारा एक आसन है, आज तुम अकेला पानी पियेंगे, आज तुम अकेला दूध ही लेंगे, आज तुम्हारा कुछ भी मन नहीं है कुछ भी लेने का, अच्छा लग रहा है। 5 दिन हो गए हैं, 7 दिन हो गए हैं, आज तो उनका सम्मान भी होना चाहिए था जिन जिन ने 8-8 दिन, छोटे छोटे बच्चे हैं 18 वर्ष के 20 वर्ष के, और 5-5 दिन नहीं 8-8 दिन 9-9 दिन के जिन्होंने उपवास कर लिए हैं और अकेला पानी भी दिया है तो लिया है, नहीं तो पानी भी नहीं लिया है। इन सब का हमें जो जो सही नहीं है उसका सम्मान करने का दिन है। आप अपने मन से कम उनका सम्मान तो करिएगा कि हाँ सचमुच इन्होंने संयम धारण करके हमें भी दिशा दी है और अपने जीवन को पवित्र बनाया है। ऐसे अगर हम संयमित व्यक्ति का भी सम्मान करेंगे और अच्छे लोगों का सम्मान करेंगे तो हमारा जीवन भी पवित्र होगा। सच्चाइयों का सम्मान करना ही शायद मेरे जीवन में, मैं तो सोचता हूँ, धर्म की शुरुआत है। आज दसों धर्म का अगर हम कोई सार लेना चाहें तो इतना ही है कि हम अपने जीवन को पवित्र रखें, अपनी वाणी को पवित्र रखें और अपने शरीर को भी जितना हो सके पवित्र रखें। देह की आसक्ति से बचना ही शरीर की पवित्रता है। ऐसी इंद्रियों की आसक्ति छोड़ करके फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे, ऐसी भावना भाते हुए बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासन। जय बोलो श्री पंच परमेष्ठी भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, हमारे लिए यह जो आज का एक अंतिम दिन और शेष है, हो सकता है ये हमारे जीवन का भी अंतिम दिन हो, इसे कोई नहीं जानता। ऐसा विचार कर जितने भी क्षण अभी शेष हैं उन क्षणों में हम अपने आत्मिक पवित्रता की साधना करना प्रारंभ करें। जिस उद्देश्य को लेकर के हमने यहां पहले दिन से एक एक कदम साधना का बढ़ाया था, आज इस साधना का अंतिम क्रम में दसवां कदम, यह कदम बढ़ते ही आदमी अपनी आत्मा के निकट पहुंच जाता है। यदि यथार्थ परमार्थ रूप से आपने साधना की है तो आज की साधना कर लेने के बाद तो आप अपनी आत्मा के निकट अवश्य होंगे। ये वह धर्म है जो आत्मा के लिए परमात्मा तक बना देती है। विकारों से हटकर के अपने आत्मिक स्वभाव की तरफ ले जाने की एक साधना इस धर्म के माध्यम से की जाती है। हम चाहते हैं हमारी आत्मा का उत्थान हो, आत्मा का पतन शायद कोई नहीं चाहता होगा। हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारी आत्मा का विकास कैसे हो, लेकिन जैन धर्म कहता है कि यहां मात्र चाहत से काम नहीं चलता, चाहत के साथ साथ जो आपने अभी चाहा है उस चाहत के साथ आपको पुरुषार्थ करना होगा, उसे उपलब्ध करने का, वैसे बनने का, वैसे होने का। यदि हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमारी चाहना, हमारी अंतर की अभिलाषा, हमारी आकांक्षा और अपेक्षा जो एकमात्र अपने आत्मा के उत्थान की है वह सफलीभूत हुए बिना न रहेगी। लेकिन शर्त इतनी ही है पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ कहां करना है हमारे लिए? आत्मा के उत्थान और पतन के दो ही कारण हैं। जब यह आत्मा पांच इंद्रियों और मन के विषयों में आसक्त हो जाता है तो उसकी यह आसक्ति, विषयासक्ति, उसके पतन का कारण बनती है, उसके अधोगति का कारण बनती है, उसके संसार परिभ्रमण का कारण बनती है और अनेकानेक दुख और पीड़ाओं को संचित करने में भी यही हमारी विषयावी शक्ति कारण बन जाती है। हम क्या चाहते हैं? यदि हम आत्मा का पतन नहीं चाहते हैं तब फिर इन पतन के कारणों से हमें बचने की कोशिश करना होगी। जो व्यक्ति, जो भव्यात्मा, जो धर्मात्मा पुरुष इन आसक्ति के कारणों से दूर हो जाता है उसके जीवन में उत्थान होता है। उत्थान विरक्ति से हुआ करता है। आत्मा का उत्थान वैराग्य से होता है, राग से नहीं, द्वेष से नहीं, कसायों से नहीं, विषयों में तन्मय होने से नहीं। इनसे जो जितना विरक्त हो लेता है, जो जितना जितना वैराग्य के स्तर पर जीने की कोशिश करता है वह अपनी आत्मा का उतना उतना उत्थान करता चला जाता है, उसकी आत्मा का उतना उतना विकास होता चला जाता है। एक समय आता है कि हम अपनी आत्मा के पूर्ण विकास की दशा, जिसे हम परमात्मा की अवस्था कहते हैं, उसे हम उपलब्ध कर लेते हैं। आज का यह दिन, यह पर्युषण पर्व का अंतिम दशलक्षण धर्म में अंतिम धर्म, जिसे हम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कहते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ अलग ही है कुछ। इसी यदि आप इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझना चाहेंगे तो इसका अर्थ कुछ और ही मिलेगा, और यदि इसे आप व्यवहारिक जीवन में समझना चाहोगे तो इसका अर्थ कुछ और ही मिलेगा। धर्म आध्यात्मिक दृष्टि का एक पहलू है। ब्रह्म का अर्थ आत्मा होता है और चरि का अर्थ चरण करना, आचरण करना। जो अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में आचरण करता है उसमें तन्मय होता है, उसमें लीन होता है, वही व्यक्ति इस उत्तम ब्रह्मचर्य को उपलब्ध करता है। लेकिन ये पहलू बड़ा कठिन है, बहुत जटिल है। यहां तक कि यात्रा हर व्यक्ति से संभव नहीं है, क्योंकि इतनी साधना और इतनी पात्रता उसके जीवन होनी चाहिए कि वह इसको कर सके। इसके पहले भी और कुछ साधनाएं करना पड़ती है। जो व्यक्ति अभी विषयों की अभिलाषा में आमूल चूल डूबा हो, एड़ी से चोटी तक अभी विषयों की अभिलाषा में अभी लीन हो, तन्मय हो, उसके जीवन में ये आध्यात्मिक परिभाषा का उदय अभी तो संभव नहीं हो सकता है। जब तक कि वह विषयों से विरक्त नहीं होगा, जब तक कि वह विषयों से दूर नहीं होगा, जब तक कि व्यवहारिक जीवन में होने वाले आचरण को उपलब्ध नहीं कर लेगा, तब तक वह अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है, उसमें लीन नहीं हो सकता है। इसमें लीन होने वाला व्यक्ति आनंद के सागर में लीन हो जाता है, शांति के सरोवर में निमग्न हो जाता है, पीड़ा चिंता दुख आकुलता सब दूर हो जाती है, मिट जाती है। ऐसा है यह ब्रह्मचर्य धर्म। लेकिन आज ना सही, कल, कल ना सही परसों, एक ना एक दिन तो हमें इस धर्म को उपलब्ध करना ही होगा। जो आपने और हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ये तो प्राप्त करना ही होगा। लेकिन आज नहीं हो रहा तो कम से कम इससे पहले इसकी पूर्व की साधना, पूर्व की एक पात्रता तो कम से कम हासिल कर लें, जिसके स्तर पर हम उसे पाने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे भीतर में दो ही चीजें हैं, एक तो संसार से वैराग्य, शरीर से वैराग्य, संसार से भीति जिसके लिए होती है, वही व्यक्ति अपनी आत्मा के समीप पहुंच पाता है, क्योंकि उसके जीवन में वैराग्य का अवतरण होता है। हमारे जैनाचार्यों ने एक ऐसा सूत्र निकाल करके रखा है, जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। तुम यदि संवेग को प्राप्त होना चाहते हो, तुम यदि वैराग्य को उपलब्ध होना चाहते हो, तो अपने जीवन में हमेशा दो चीजों का ही विचार करते रहो, संसार और शरीर। ये दो ही एक ऐसे बिंदु हैं जिनके विचार से हमारे जीवन में संवेग और वैराग्य की उपलब्धि होती है। संवेग का अर्थ है संसार से भीति, संसार से भय, मतलब कि संसार जिसमें हम रह रहे हैं ये हमारी वासनाओं से निर्मित है, और जब ये संसार निर्मित होता है तो हमें दुख देता है, पीड़ा देता है, तो हमें इससे पीड़ा के भोगने में डर लगता है। जब तुम्हें दुख से डर है, पीड़ा से डर है, तो उनके कारणों से क्यों नहीं डरते हैं? उन विषय वासनाओं से हमें भीति क्यों नहीं होती है? आचार्य तो यही कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि यही कहते हैं कि संसार के स्वरूप को समझो, संसार से नियम से तुम्हें भय पैदा होगा, भीति होगी, जिसे संसार से भय होगा उसे संसार के कारणों से भी भय होगा। यदि तुम वैराग्य को प्राप्त होना चाहते हो तो शरीर के स्वरूप का विचार करो। यह जो शरीर, ये पांच भूतों से बना होगा यह शरीर, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, परिवर्तनशील है। आज है, कल नहीं होगा। आज की अवस्था कुछ और है, कल की अवस्था कुछ और हो सकती है। आज शरीर स्वस्थ है, कल अस्वस्थ हो सकता है। आज सुंदर दिखाई दे रहा है, कल कुरूप हो सकता है। आज बहुत अच्छा लग रहा है, कल घिनौना हो सकता है। आज इसमें सुंदरता दिखाई दे रही, सुगंधी आ रही हो, कल की इसमें से दुर्गंध बहेगी, कोई जरूरी नहीं कि एक जैसा रहे, इसका परिणमन हमेशा होता रहता, परिवर्तन हमेशा होता रहे। जो इसके परिवर्तन के स्वरूप को समझ लेता है कि शरीर का ये स्वभाव ही ऐसा है, तब इसके साथ राग करने की जरूरत क्या है, इसके साथ आसक्ति की जरूरत क्या है। वह आदमी नियम से विरक्ति को प्राप्त होता है, और यही विरक्ति ही व्यक्ति के जीवन में वैराग्य को पैदा कर देती है। यही है अनासक्ति और विरक्ति आत्मा के पतन और उत्थान के दो ही कारण हैं। हम यदि उत्थान चाहते हैं तो हमें विरक्ति लाना होगा। हमारे व्यवहारिक जीवन में ये धर्म, ये विरक्ति कैसे आए, कैसे हम ब्रह्मचर्य को जिए, ब्रह्मचर्य में से हमारे नैतिक आचरण का एक मूलभूत सिद्धांत है। ये हमारे जीवन की एक नींव है। जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं होता, वह कोई भी व्रत, कोई भी नियम, कोई भी धर्म अपने जीवन में अंगीकार नहीं कर सकता है। ये ब्रह्मचर्य बताता है सदाचरण की ओर हमारा कदम बढ़ना, नैतिकता की ओर हमारा आचरण होना। ये ब्रह्मचर्य की पूर्व भूमिका है। जिसके जीवन में नैतिकता ना हो, जिसके जीवन में सदाचरण ना हो, उसके जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं आ सकता। हर व्यक्ति के अंदर में दो तरह की धाराएं प्रवाहित होती हैं। वैसे हमारे आत्मा के अंदर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा है, हम उसको किस तरफ बहाना चाहते हैं, हम उसे किस तरफ ले जाना चाहते हैं, वो ऊर्जा, वो आत्मिक शक्ति उस तरफ बह जाती है। बहाने के तरीके, उसको प्रवाहित करने के तरीके अलग अलग है। पानी पानी हुआ करता है, उसे आप कैसा बहाना चाहते हो, उसे नल में से बहाना चाहते, उसे नहर में से बहाना चाहते, उसे नदी में से बहाना चाहते, उसे किस तरफ से ले जाना चाहते हो, पानी वहां चला जाएगा। ये ऊर्जा हमारी एक बिजली की तरह है। बिजली को आप कहां बहाना चाहते हो, उसे तार के माध्यम से बल्ब में ले जाना चाहते हो, प्रकाश देखा, ट्यूबलाइट में ले जाना चाहते हो, सफेद प्रकाश देखा, किसी यंत्र में प्रवाहित करोगे वो यंत्र चालू हो जाएगा। इसके लिए यदि किसी हीटर में लगा दोगे, वह बिजली अग्नि का रूप धारण कर लेगी, भस्म कर सकती है, जला सकती है, गर्म कर सकती है। बिजली के कई रूप हो सकते हैं, बस शर्त है कि इसका उपयोग करने वाले पर निर्भर है वो कैसा करना चाहता है। हमारी आत्मिक ऊर्जा का भी यही एक ये है। हर व्यक्ति के पास में वो आत्मिक ऊर्जा है, लेकिन उसका उपयोग कैसा करना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हमने उपयोग करना नहीं सीखा। ये हमारी आत्मा की धाराएं, एक मोह की धारा है और एक धारा हमारी प्रेम की धारा है, एक स्नेह वात्सल्य की धारा है। जब ये हमारी आत्मा की ऊर्जा विषय वासनाओं की धाराओं से बह जाती है, उसे हम मोह की धारा कहते थे, क्योंकि वे पांचों इंद्रियों के विषयों में जाती है। और एक हमारी धारा जो संयत होकर के, जो करुणा का रूप धारण करके, जो मैत्री और असलता के रूप में धारण करके प्रेम के रूप में बहती है, वो प्रेम की धारा कहलाती है। एक से विनाश होने वाला है, विध्वंस होने वाला है, पतन होने वाला है, दूसरी से विकास होने वाला है, उत्थान होने वाला है। हम क्या चाहते हैं, हम अपनी ऊर्जा को कैसा बहाना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य यही सिखलाता है। तो अपनी ऊर्जा को ठीक ठीक उपयोग करना सीख लो। अभी तक ऐसा ही हुआ है कि हमारी आत्मिक ऊर्जा विषय वासनाओं में ही बही, मोह की धारा के रूप में परिणत हो गए, और ये किसी भी इंद्रिय से प्रवाहित हुई, उसने वही देखा, वही सूंघा, वही चखा, वही भोगा जो इसे भोगने की अंदर लालसा जीवित थी। मत एक नैतिक आचरण भी इसके जीवन में नहीं आ पाया है। हमारी दृष्टि कैसी है, सदाचरण और नैतिकता हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। जब हमारी दृष्टि पवित्र होती है, जब हमारी दृष्टि निर्मल होती है तो दृष्टि का फेर होते ही, दृष्टि बदलते ही सृष्टि स्वयं बदल जाती है। हम सृष्टि को बदलने की कोशिश करते हैं, हम इंसान को बदलने की कोशिश करते हैं, हमारी धारणाएं गलत हैं। बिल्कुल नहीं बदला जा सकता है, बदलाहट परिवर्तन हमारे भीतर हो सकता है, हमारे देखने में हमारी दृष्टि में हो सकता है। यदि हम करना चाहें तो कर सकते हैं, हम किस पदार्थ को किस नजरिए से देखना चाहते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। हम उसे वासनाओं से युक्त होकर के देखना चाहें तो हम वासनाओं में देख सकते हैं, और यदि वासनाओं से परे होकर के उसको देखना चाहें तो उसे हम उस दृष्टि से देख सकते हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है श्री रामचंद्र जी के जीवन की। जब वो वनवास के समय दंडकारण्य में थे, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, अचानक सीता जी का हरण जब हो गया तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई सीता की खोज में निकले थे। वृक्षों से, पत्थरों से, चट्टानों से, पशु पक्षियों से पूछते जा रहे थे। रास्ते में कुछ आभूषण मिले तो श्री राम ने लक्ष्मण को दिखाते हुए कहा कि भैया पहचानो, ये कुंडल कहीं सीता के तो नहीं है? थोड़ी और दूर बढ़े तो ये हार मिल गया एक, ये हार सीता का तो नहीं है? थोड़ी दूर बढ़े तो कंगन मिल गए। पूछा गया, लक्ष्मण बताओ ये कंगन सीता के तो नहीं है? लक्ष्मण क्या बताए, एक ही जवाब दिया लक्ष्मण ने, कुंडली नैव जानामि नैव जानामि कंकड़े नूपुरामेव जानामि नित्यम पादाभि वंदना। हे भैया, ना मैं एक कुंडलों को जानता हूं कि सीता के हैं, ना मैं इन कंकड़ों को जानता हूं कि सीता के हैं। यदि आप मुझसे पूछो तो मैं एक ही चीज जानता हूं, मैं सीता के नूपुर पहचानता हूं, उनकी पैरों की अंगुलियों में जो विछड़ियां, जो विशुए, जो नूपुर है, मैं मात्र उनको जानता हूं। कारण कि मैंने आज तक सीता के चरणों की वंदना की है, मैंने ऊपर नहीं देखा, हमेशा नीचे देखा है। देखने वाले की दृष्टि का नजरिया है कि वह कहां देखना चाहता है। कोई लक्ष्मण जैसा यदि हो वो चरणों में दृष्टि रखेगा, क्योंकि भाभी उसकी मां की तरह दिखाई दे रही थी, हमेशा वंदना की है। ये हमारी दृष्टि का फेर है, हम दृष्टि में क्या देखना चाहते हैं हमारे ऊपर निर्भर करता है। जब दृष्टि हमारी बदल जाती है तो सब कुछ बदल जाता है हमारे लिए। वासनाओं के कारण पर वही दिखने लगता है जो पतन का कारण बनता है, शायद लगता है। इसलिए हमारे विद्वानों और ऋषि मुनियों ने लिखना पड़ा है। वैसे दोनों ही दोषी हो सकते हैं, लेकिन क्या किया जाए। कथन जब किया गया है किसी एक की अपेक्षा से किया गया, लेकिन दूसरा उसमें है, हमें निकालना चाहिए कि हम निकाल नहीं पाते। एक जगह कहा गया है, नारी का चित्रण करते हुए लगेगा, नारियों को बुरा लग सकता है कि गलत लिखा है, संसार में बिसबेल नारी तज गए जोगेश्वर। कई मां बहनों ने आकर के कहा होगा, कई विद्वानों से पूछा होगा, और यही कहा उन्होंने कि ये किसी पुरुष ने लिखा होगा इसलिए ऐसा लिखा है कि नारी विष की बेल है। यदि कोई नारी ऐसा लिखती तो ऐसा कभी नहीं लिखती, वो ये लिख सकती कि संसार में विष फल मनुज तज गई ये योगिनी, ऐसा लिख सकती थी। कोई महिला लिखती तो ऐसा लिख सकती, कोई पुरुष ने लिखा होगा इसलिए ऐसा लिखा, ऐसा नहीं है, सही लिखा गया। दूसरा वहां पर मौजूद है, जहां नारी है वहां पुरुष हमेशा होगा, पुरुष के अभाव में नारी कभी हो नहीं सकती और नारी के अभाव में पुरुष कभी हो नहीं सकता है। बड़ा विचित्र समीकरण है इसका, कहा गया है कि नारी विस्की बेल की तरह है, तब तो बड़ा आश्चर्य है। नारी विस्की बेल, जो विष का भक्षण करेगा वो मरेगा, उसका विनाश होगा, उसका पतन होगा। तो मतलब यदि ये विस्की बेल सब हो जाएं, तो यहां बैठने वाले सब विष्फल हो जाएंगे। ध्यान रखना, बड़े बड़े महापुरुष, संत महंत और भगवान जैसे, ये यहीं से पैदा होते हैं। यदि ये विस्की बेल है, तो इससे पैदा होने वाला, उसमें लगने वाला फल क्या होगा? आम के वृक्ष में फल लगेगा तो काय का लगेगा? आम का लगेगा ना। और विष की बेल में यदि कोई फल लगेगा तो काय का लगेगा? विष फल लगेगा। तो आपके सारे तीर्थंकर, सारे भगवान ये विष फल हो जाएंगे, जबकि वो अमृत के फल है। सबको अमृत बांटते हैं, स्वयं अमृत स्वरूप है वे भगवान। फिर जो अमृत स्वरूप, ये अमृत पैदा कहां से हो गया? कभी विष की बेल में से अमृत नहीं निकल सकता, विष का फल निकलेगा? नहीं, ये अधूरा ज्ञान है हमारा। जहां ये लिखी गई पंक्ति, वहां पर एक और चीज लिखी गई है। जो व्यक्ति नैतिकता का आचरण करता, जो दृष्टि को बदलना चाहता है, उसे तीन खाने बनाना चाहेंगे, माता बहन सुता पहचान। एक मां का, एक बहन का और एक पुत्री का। आपकी दृष्टि में जो भी दिखे उसमें से छांट लो कि बड़ा है मां, मां के खाने में, बराबर है तो बहन के खाने में, छोटा है कोई तो पुत्री के खाने में। आप डालते जाएंगे, एक बचेगा अकेला, यदि किसी ने उसे अपनाया होगा तो। एक ही बचेगा जो इस तीन खाने में नहीं आएगा, बाकी संसार की सारी महिलाएं, ये मां बहनें तीन खानों में समाहित हो जाएंगी, मां बहन और पुत्री। एक कौन बचता है? उसका नाम है नारी। जिसने इसकी लिखे उस दृष्टि से देखा, उस दृष्टि से स्वीकार किया है, उसकी दृष्टि में विष्वेल हो सकती है, बाकी सबकी दृष्टि में विष्वेल नहीं हो सकती है। किसी की दृष्टि में मां है, किसी की दृष्टि में बहन है, किसी की दृष्टि में पुत्री है, वो विष्वेल नहीं है। विष्वेल उसके लिए है जिसकी दृष्टि खराब है, जिसने उसे अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहा, उसके लिए वो नारी विष की बेल हो सकती है, सबके लिए विष की बेल नहीं हो सकती है। ये तो हमारी दृष्टि का फेर है कि हम किसे कैसा देखना चाहते हैं। हमारा नैतिक आचरण बताता है, हमारा सदाचरण कहता है कि तुम ऐसी दृष्टि बनाओ कि यदि तुमने एक को स्वीकार किया है, उस एक के अलावा जो भी दिखाई दे रहा हो वो मां बहन और पुत्री ही देखना उसमें। वो तुम्हारे लिए कभी विष की बेल नहीं बन सकती है। विष की बेल वही बनेगी जिसे तुमने स्वीकार किया है। वो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए कारण हो सकती है, क्योंकि तुमने उसे विषय भोग की वासना की दृष्टि से देखने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हारे पतन का कारण बन सकती है। लेकिन मनुष्य के ही नहीं, महिलाओं के लिए भी पुरुष पतन के कारण बन सकते हैं। ये तो पारस्परिक संबंध है। जो जिसके लिए उस बुरी भावना से देखेगा, उसके लिए वो पतन का कारण बन जाएगा। दृष्टि बदलो, हम क्या देखना चाहे वो देख सकते हैं। एक घटना और मुझे याद आ गई। जब पांडवों के लिए वनवास मिला, घटनाएं वनवास की चल रही हैं आप, जब पांडवों के लिए वनवास मिला तो पांचों पांडव और कुंती ये सब जंगल में निवास करते थे। एक दिन एक जगह एक जंगल में रुके, जंगल बड़ा भयानक था। पांचों भाइयों ने तय किया कि यहां तो खतरा है, इसलिए एक एक व्यक्ति को जाग करके पहरा देना है रात भर, तभी सुरक्षा हो पाएगी। पांचों भाइयों ने अपना अपना समय निश्चित करके एक एक भाई ने पहरा दिया। उस रात जब भीम का नंबर आया, बाकी चारों भाई और मां सोई हुई थी और भीम पहरा दे रहे थे। उसी समय मालूम नहीं क्या ऐसा चमत्कार होगा, एक बहुत सुंदर देवों की देवांगनाओं के समान कोई अप्सरा की तरह है, कोई एक महिला वहां से गुजरी उस जंगल में और उसकी दृष्टि अचानक भीम के ऊपर पड़ गई। जैसे ही उसने भीम को देखा तो देखते ही रह गई। पहली बार देखने में आश्चर्य, दूसरी बार देखने में आकर्षण और बार बार देखने में वासनाएं पैदा हो जाती हैं। और हुआ यही कि वो महिला वासना से ग्रसित हो गई, भीम के नजदीक आई, उसने हावभाव प्रदर्शित किया, अपनी ओर आकर्षित करना चाह और बातचीत प्रारंभ की तो उसने अपना प्रणय का प्रस्ताव भीम के सामने रख दिया। अपने रूप का बखान कर रही थी कि मेरे समान सुंदर शायद इस तीनों लोकों में कोई स्त्री नहीं होगी जितनी सुंदर मैं हूं। भीम ने उसका सब देख लिया, रूप रंग देख लिया, हाव भाव देख लिए, उसने जो कहा वो सुन लिया। इसके बाद भीम ने क्या कहा, लगता तो है बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो सकता है कि आप जैसा सुंदर कोई दूसरा नहीं होगा। तो उस नारी को लगा कि आप काम बनने वाला है अब तो, मतलब इनके विचार कुछ हमारी तरफ आ रहे हैं, तो उसमें क्या बात है फिर स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन गलती हो गई मुझसे एक। क्या गलती हुई, अभी कोई गलती नहीं, जो मैंने सोचा था, जो सोच करके मैंने किया कि शायद उससे सुंदर दुनिया में कोई नहीं होगा, उसे लगा है अरे अभी क्या बिगड़ा है, मैं तो हूं सुंदर। तो भीम कहते नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था कि उससे भी कोई सुंदर है। यदि मुझे मालूम होता कि उससे कोई सुंदर है तो आप ही समझेंगे, क्या समझेंगे आप, कि उससे कोई सुंदर है तो शादी रचा लेंगे, यही ना समझेंगे। भीम कह रहे कि यदि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, यदि मुझे मालूम होता कि आप उससे भी सुंदर यदि कोई है तो मैं उसके पेट से जन्म लेता, मेरी गलती हो गई, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी मां से भी कोई सुंदर महिला इस संसार में हो सकती है। यदि मालूम होता तो मैं उस महिला के गर्भ से जन्म लेता। मैं भीम ने क्या देखा, मातृत्व की दृष्टि, देखने का नजरिया है कि हम किसे क्या देखना चाहते हैं, मां देखना चाहते हैं कि बहन देखना चाहते हैं कि पुत्री देखना चाहते हैं या पत्नी देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, आपकी आंखों में है, आपके देखने में है। अब हम ऐसा कुछ ना देखें। आज के इस ब्रह्मचर्य धर्म के दिन कम से कम अपनी चेतना की धारा को, अपनी अंतर की ऊर्जा को विषयों की अभिलाषा से मोड़ करके कोई दूसरी तरफ ले जाए।